जिस प्रकार माता के दूर चले जाने पर बालक रोता है, उसी प्रकार जब प्रहलाद महाराज को लगता है कि भगवान दूर है तो वे रोने लगते हैं। नदती पुनः प्रहलाद जैसे भक्त कभी कभी अपने को शांत कराने के लिए भगवान को माता के समान दूर से आता देखते हैं और बालक से ये कहते सुनते हैं, मेरे बेटे मत रहो, मैं आ रही हूँ। तब भक्त अपने चारों ओर की परिस्थितियों की परवाह न करके सोचने और गान नाचने लगता है, ये रहे मेरे स्वामी, मेरे स्वामी आ रहे हैं। इस प्रकार भक्त पूर्णतः हर्षित होकर कभी कभी भगवान की लीलाओं का अनुकरण करता है। जिस तरह ग्वाले जंगली जानवरों के आचरण की नकल उतारते हैं किंतु वे सचमुच भगवान नहीं बनता, प्रहलाद महाराज ने यहाँ पर वर्णित आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति आध्यात्मिक ज्ञान के उन्नति के द्वारा प्राप्त कर ली थी। हरे कृष्ण। कभी कभी भगवान का दर्शन करके प्रहलाद महाराज पूर्ण उत्सुकतावश जोर से पुकारने लगते, कभी कभी प्रसन्नतावश अपनी लज्जा खो बैठते और हर्ष से नाचने लगते। कभी कभी कृष्ण के भावों में विभोर होकर वे भगवान से एकाकार होने का अनुभव करते और उनकी लीलाओं का अनुकरण करते। क्या बताया जा रहा है, यहाँ पर चर्चा हो रही है, पिछले श्लोक से लेकर चलते हैं, कृष्ण भावनामृत में प्रगति होने से कभी रोते थे, कभी हंसते थे, कभी हर्षित होते थे, कभी कुछ स्वर में गाते थे। कृष्ण भावनामृत में प्रगति, कितने लोग समझते हैं कि वो इस लेवल तक पहुंच सकते हैं? पहुंचने के लिए मूल चीज क्या चाहिए, बेसिक क्या चाहिए? बट बेसिक इज रिक्वायर्ड। आधारभूत चीज जो है इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए आपको क्या चाहिए? भगवान से प्रेम तो इससे डेवलप होगा ना, भगवान से प्रेम तो इससे डेवलप होने वाला है। अल्टीमेटली तो इससे डेवलपमेंट होनी है ना भगवान के प्रेम की। उसके लिए आपको चाहिए क्या, किस स्थिति में आप जाएंगे, या कौन सी स्थिति ऐसी है जब आप उसमें पहुंच जाएं तो ये लेवल आ जाए, बताइए। कोई स्थिति होनी चाहिए ना, क्या स्थिति है? कि हम जो है अपने आप को भूल जाएं, वो स्थिति क्या है? पूर्णतया समर्पित हो जाना। पूर्णतया समर्पित कैसे होते हैं बताइए? आप पूर्णतया समर्पित कैसे हो जाएंगे?
हर चीज से ही,
हर
पूर्ण रूप से,
पूर्ण रूप से भगवान को जब आप स्मरण करते हैं, भगवान को जब आप याद करते हैं, तो उस वक्त आपकी स्थिति क्या होती है? मैं भगवान का स्मरण करना चाहता हूं या मैं भगवान का स्मरण कर रहा हूं, तो आपकी स्थिति क्या है? स्मरण करना है ना, यहां क्या हो रहा है, भगवान का स्मरण हो रहा है कि नहीं हो रहा? भगवान का स्मरण करके सारे इफेक्ट आ रहे हैं ना, तो भगवान का जब स्मरण होगा तो उसमें क्या सिचुएशन आती है, किस पोजिशन पे आप पहुंचते हो? और किसका स्मरण करो, बाकियों का स्मरण छूटता आपसे? छूटता है? संसार का स्मरण छूटता है?
नहीं छूटता।
आप जो है कह रहे हो कि बाकियों का स्मरण छोड़ दो, आप संसार का स्मरण छोड़ पाते हो? आपने कहा मैंने 3 से लेकर 4 बजे तक जो है भगवान का स्मरण करने का टाइम फिक्स कर दिया, वेरी गुड। और 3 से 4 के बीच में क्या आपको डिस्टर्बेंसेस नहीं होती? भगवान का स्मरण करने में आपको डिस्टर्बेंस नहीं होती? होती कि नहीं होती? ध्यान लगाना है, ध्यान तो ध्यान के जो पहले के अंग हैं वो पूरे होने चाहिए ना, यम, नियम, आसन, उसके बाद क्या आता है? प्रत्याहार। प्राणायाम है प्रत्याहार। प्रत्याहार क्या है? प्रत्याहार है इंद्र विषयों को इंद्रियों से विलग करना, उनको हटाना। जो ऑब्जेक्ट्स हैं, कान का ऑब्जेक्ट है शब्द, आंख का ऑब्जेक्ट है रूप, नाक का ऑब्जेक्ट है गंध, जीवा का रस और त्वचा का स्पर्श, इन विषयों से क्या आप अपनी इंद्रियों को अलग कर पाते हैं, विलग कर पाते हैं, सेपरेट कर पाते हैं, हटा सकते हैं? जब आप हटा नहीं सकते तो आप इसके बाद जो है धारणा कैसे आएगी? धारणा मतलब कंसंट्रेशन, और उसके बाद ध्यान कैसे आएगा? ध्यान के तीन अंग हैं, समझिएगा कैसे हम फेल होते हैं। पहला अंग है ध्यान करने वाला। ध्यान कौन लगा रहा है? मैं, आप ध्यान लगा रहे हैं ना। दूसरा अंग है इसका प्रोसेस, ध्यान लगाने का तरीका क्या है। मैं ध्यान में बैठना चाहता हूं, मैं ध्यान में चला गया। और तीसरा अंग है किसके प्रति ध्यान लगाया जा रहा है, किस पे ध्यान लगा रहा है। एक लेक्चर सुन रहे थे किसी टीवी के ऊपर, उसने कहा पहले अपने पांव पे ध्यान लगाइए, भगवान पे नहीं करें। तो पांव के ध्यान में फंस गया, उसके आगे बढ़ी नहीं पा अपने पांव। वो आहिस्ता आहिस्ता करके ऊपर लाते 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 यहां तक लेके आ रहे हैं, अल्टीमेटली यहां तक तो पहुंचे ही नहीं, उसके पहले 500 तो डिस्टर्बेंस आ गए। किसी ने टीवी चला दिया, किसी ने स्कूटर की पंप बोल गई, गाड़ी का हॉर्न बोल गया, रेलवे स्टेशन ट्रेन की आवाज आ गई, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स। किसी ने डोर बेल लॉक कर दी, किसी ने कहा सब चीज जल्दी जल्दी देखना जरा, मैं तो ध्यान में बैठा हूँ, वहां पत्नी की आवाज आ गई, दूध बन गया देखो जरा। तो ये जो डिस्टर्बेंसेज हैं, डिस्ट्रैक्शंस हैं, तो इसके अंदर जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमको तीनों का ज्ञान रहता है। तीन कौन? अपना ज्ञान है, मैं ध्यान लगा रहा हूं इसका भी ज्ञान है, और किसके प्रति लगा रहा हूं उसका भी ध्यान है। अब अगर ध्यान में परफेक्शन लेनी है तो उसका प्रोसेस क्या है? सबसे पहले तो अपने को भूलना होगा, I have to forget myself। फिर मतलब ध्याता जो है, ध्याता मतलब ध्यान करने वाला अपने को भूल गया। दूसरा है मैं ध्यान में हूं, ये प्रोसेस को भूलना होगा। और तीसरा है कि केवल जो ध्येय है जिसके प्रति आप ध्यान लगा रहे हो उसी का स्मरण होना चाहिए और किसी का नहीं, तब जाके आप मन को वश में करने में सफल होते हो। ये तो मन वश में नहीं होता। जब समाधि की स्टेज आती है, ये प्रहलाद महाराज समाधि की स्टेज में भूल रहे हैं अपने आप को, इस पे ध्यान है, प्रोसेस भूल गए कि मुझे बैठना चाहिए, कि मुझे उठना चाहिए, कि मुझे नाचना चाहिए, कि मुझे गाना चाहिए, मुझे कैसे ध्यान लगाना चाहिए, भगवान पे ध्यान कैसे होना चाहिए, इनका प्रोसेस क्या है? समझ में आ रही मैं क्या कर रहा हूं? नसीब नो, मतलब अपने को भूल गए, भगवान के प्रति ध्यान मैं लगा रहा हूं उसको भूल गए, क्या याद है? केवल भगवान याद है। तो इसी तरह इस समाधि जो है, समाधि के भी दो अंग हैं, एक है संप्रज्ञात, एक है असंप्रज्ञात। संप्रज्ञात के अंदर क्या है कि आपको तीनों अंग याद है, ध्याता मैं याद हूं, प्रोसेस ध्यान वो याद है, और ध्येय इसके प्रति लगा रहा हूं वो भी याद है। परंतु जब असंप्रज्ञात आ जाती है, मतलब संप्रज्ञात के तीनों अंग जो हैं वो उसे दो अंग भूल गए और एक ही अंग याद रह गया कि मेरा ध्येय क्या है, किस ध्येय के प्रति जो है मेरे को ध्यान लगाना है, केवल वही याद है। यहां जो है प्रहलाद महाराज के बारे में जब आप चर्चा करते हो कि कृष्ण भावनामृत में प्रगति होने से वे कभी रोते थे, कभी हंसते थे, कभी हर्षित होते थे, कभी उच्च स्वर में गाते थे। उसके पहले में प्रहलाद महाराज सदैव कृष्ण के विचारों में लीन रहते थे, सदैव। क्या लेवल आया सदैव का? अनन्य चेता, उनके चिंतन में और कुछ है ही नहीं। चिंतन में कौन है? केवल भगवान। इस प्रकार भगवान द्वारा आलिंगित उन्हें पता नहीं चल पाता था कि उनकी शारीरिक आवश्यकताएं बैठना, चलना, खाना पीना, सोना बोलना किस तरह स्वतः संपन्न होती थी। हम लोग चिंता करते हैं आज क्या बनेगा, भेजा बताना, खाने में क्या बनना है, भगवान को क्या खिला रही है उसकी चिंता नहीं है। तो मुझे क्या मिलेगा उसके पहले सोच ले क्या बना रहे हो खाने में, कि मैं अपना मूड बना लूँ कि मुझे यहाँ खाना है कि बाजार में खाना है, घर में खाना है कि बाहर खाना है। तो वहाँ जो है प्रहलाद महाराज बिल्कुल भूले हुए हैं, इस संसार को भूले हुए हैं, अपने आप को भूले हुए हैं। लेवल क्या आ गया है कि भगवान का दर्शन करके प्रहलाद महाराज पूर्ण उत्सुकतावश जोर से पुकारने लगे। अगर मैं आपसे कहूं कि चार आदमी आप उठिए और वहां चौक में जाके जो है कीर्तन करने लगी और नाचिए, तो आप दो बार सोचोगे। बड़ा सा ग्रुप होता तो किसी को पता ना लगता, और चार ही आदमी जाके कैसे करें, या एक आदमी कैसे करे, या दो आदमी कैसे करे, हाउ इज दैट पॉसिबल। यहां ठीक है अंदर है, बाहर का व्यक्ति देख नहीं रहा है, 10-20-50-100 लोग हैं, नाच भी रहे हैं, कूद भी रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। एक कॉम्प्लेक्स मंदिर का अंदरूनी कॉम्प्लेक्स है, बाहर सड़क भी तो नहीं है। सड़क पे यात्रा हो, 50-100 लोग हो फिर तो ठीक है, 25-30 हो तो ठीक है, पर अगर दो व्यक्तियों को बोला जाए एक करताल ले लें, एक मृदंग ले लें, जाकर सड़क में नृत्य करो, कीर्तन करो, तो जाएंगे लोग हमें पागल समझेंगे, हम तो नहीं जाते। परंतु मैंने देखा एक बार हमारे पास वीडियोज आए थे, रशियन कंट्रीज हैं कुछ, 5 भक्त हैं और बहुत बढ़िया सड़क है, फर्स्ट क्लास मल्टीस्टोरी बिल्डिंग्स हैं, और 5 भक्त जो है उसमें 2 माताएं हैं, 3 प्रभु जी हैं, अपना एक के पास मृदंग है, 2 के पास करताल है, और एक के पास झांझ है, ताली बजा रहे हैं और अपना कीर्तन करते हुए, अपना खूब ऐसे कहाँ खड़ा है, वहाँ खड़ा है, यहाँ खड़ा है, अपना सब कीर्तन करते हुए जा रहे हैं। उनको किसी की चिंता नहीं, किसी की परवाह नहीं, विचार नहीं है। क्यों? क्या स्मरण क्या है? ध्येय। मतलब वो अपने को भूल गए कि हमारे बारे में लोग क्या कहेंगे, मैं कर रहा हूं इसको भी भूल गए हैं, क्या याद है? केवल भगवान, कि उनके लिए कर रहा हूं। तो यहां पर जो है प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंदर चर्चा करते हैं कि प्रहलाद महाराज कभी अनुभव करते कि भगवान उनसे दूर चले गए हैं तो वे उन्हें जोर से पुकारते, जब वे देखते कि भगवान उनके समक्ष हैं तो प्रमोदित होते हैं। अपने आंखें जो मेरी हैं देखेंगी तो वही ना, देखेंगी कि नहीं देखेंगी, कौन देखेगा? देखना जो है दो तरीके से होता है, एक आप आंखों से देख रहे हो, दूसरे आपके अंतःकरण के अंदर छवि स्पष्ट हो गई। कहते हैं भगवान तो सामने नहीं है पर मुझे दिखाई दे रहे हैं, आंखें कहां कहां आंखें, वो सामने तो है नहीं, सामने तो नहीं है ना, फिर भी मुझे दिख रहे हैं। तो आपका जो अंतकरण है उसमें भगवान की छवि स्पष्ट हो रही है, जो आपको दृश्यमान हो रही है। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कभी भगवान उनसे दूर चले गए, फील है अंतकरण से, दृष्टि चल रही है, देखते हैं कि भगवान मुझसे दूर है, थोड़ा डिस्टेंट है, तो उनको जोर से पुकारते हैं। और फिर जब वे देखते हैं कि भगवान उनके समक्ष हैं तो वे प्रमोदित होते हैं, खुश हो जाते हैं कि मेरे बिल्कुल सामने है, ये खड़े बिल्कुल सामने खड़े, बिल्कुल दूर तो है ही नहीं, बिल्कुल सामने है। कभी कभी अपने को परम समझकर भगवान की लीलाओं का अनुकरण करते हैं। एक होता है आप वॉलंटरली मीन्स जानबूझ के लीलाओं का अनुकरण कर, जैसे आजकल लोग करते हैं, बहुत सारे भगवान बने हुए हैं, वो भगवान की लीलाओं का जानबूझकर अपने प्रॉफिट्स के लिए, अपने बेनिफिट्स के लिए, अपने स्वार्थ के लिए भगवान की लीलाओं का अनुकरण करते हैं। यहां इनवॉलंटरी हो रहा है, स्वाभाविक तौर से, नेचुरली, मतलब होश नहीं है उस स्थिति में लीला करनी है, नो, ऑटोमेटिकली कभी बीच में से जो है वो लीला का अनुकरण हो जाता है, जिसके बारे में खुद को नहीं पता होता है कि मैं क्या कर रहा हूं। और भगवान से विलग होने पर वे उन्माद के लक्षण प्रकट करते हैं। उन्माद किसे कहते हैं? पागलपन, कभी जोर जोर से चिल्लाना, कभी जोर जोर से हंसना, कभी जोर जोर से रोना, इस तरह के जो लक्षण है वो उन्माद कहलाता है। उन्माद का मतलब होता है व्यक्ति अपने आप को भूल गया है, इस फॉरगेट, अपना स्मरण नहीं है उसको, इसलिए वो क्या कर रहा है उसे खुद नहीं मालूम है, मुझे खुद ज्ञान नहीं है कि वो क्या कर रहा है। तो भक्त की इन भावनाओं को निर्विशेषवादी कभी भी समझ नहीं सकेंगे। तो निर्विशेष का मतलब है जिनके लिए कुछ भी विशेष नहीं है वो इन लीलाओं को नहीं समझ सकते, इसको नहीं समझ सकते। यहां जो है प्रभुपाद जी लिखते हैं, जो आगे इन्होंने चर्चा करी है, कि भगवान को आप पांच प्रकार के संबंध से समझ सकते हो। पहला है शांतरस, दूसरा है दास्य, तीसरा है साख्य, चौथा है वात्सल्य और पांचवा है माधुर्य। प्रभुपाद जी लिखते हैं, तब भक्त भगवान की शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य जैसे दिव्य भावों से पूजा करता है। पांच प्रकार के भाव जो है आ सकते हैं आपके मन के अंदर, उसके बाद सात छोटे भाव भी हैं, उसमें भी जा सकता है व्यक्ति। पांच जो है मुख्य भाव है, और इन मुख्य भावों के अलावा आपके पास जो है कुछ छोटे कौन भाव भी होते हैं, हास्य है, अद्भुत है, वीर है, कारुण्य है, भयानक है, विभत्स है, वो भी भाव आते हैं, परंतु पांच मुख्य भावों की चर्चा हो रही है। शांत रस के अंदर जो है भगवान के प्रति आपका संबंध है, परंतु ये जो चार स्थितियां बताई हैं, दास, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य, इनमें ना होके न्यूट्रल, निष्क्रिय अवस्था, यस, भगवान को समझते हैं, उनसे मेरी इंटरनल रिलेशनशिप है, भगवान से मेरा एक शाश्वत संबंध है, बस इतना स्वीकार करते हैं। उसमें आगे चीजें भगवान पे छोड़ देते हैं कि भगवान जैसा चाहें मेरे साथ वैसा व्यवहार करें, मुझे सेवा में लें या न लें, जैसा भगवान मेरे से व्यवहार करें उनकी इच्छा है, मैं भगवान के प्रति समर्पित हूँ, भगवान शाश्वत है, मैं उनको स्वीकार करता हूँ। जब एडवांस करता है तो सक्रिय हो जाता है, पहले निष्क्रिय था अब सक्रिय है। सबसे पहले स्थिति क्या आती है? दास्य भाव। दास्य भाव का अर्थ क्या है? ये भक्त जो है ये स्वीकार करता है कि मैं भगवान का सेवक हूं, सेवा भाव से। दास कौन होता है? दास सेवा से, सेवा करने वाला दास होता है, सेवक दास कहलाता है। तो आप जो है दास्य भाव के अंदर भगवान की सेवा में लग जाते हैं। उससे जब एडवांस करते हैं तो आता है सखा के रूप में मित्र। मित्रता का भाव कैसा है? भगवान के साथ मित्रता जो है किस भाव में उसे? दो प्रकार है, एक मित्रता है फॉर्मल, एक है इनफॉर्मल, समारंभ है विश्वारंभ। एक मित्रता के अंदर आपका भगवान के साथ फॉर्मल रिलेशनशिप है, जैसे कि सुग्रीव का था, विभीषण का था, भगवान राम के साथ फॉर्मल रिलेशनशिप, डिस्टेंस मेंटेन्ड है, फासला मेंटेन्ड है। दूसरी स्थिति के अंदर जो है इनफॉर्मल है। इनफॉर्मल का अर्थ क्या होता है? फ्री, जैसे कि वृंदावन में वो बालक, आपके साथ उनके साथ भगवान का जो है इनफॉर्मल रिलेशनशिप, श्री दामा है, सुबल है, जितने भी इनके साथ रिलेशनशिप क्या है, तू मेरे कंधे में, मैं तेरे कंधे में, तू मेरी गोदी में, मैं तेरी गोदी में, तू मेरी पीठ में, मैं तेरी पीठ में, तू मेरे गले में। अर्जुन के साथ डिफरेंट था, अर्जुन के साथ जो है डिफरेंट भाव था, अर्जुन जो है भगवान की पीठ पे कभी नहीं बैठा, भगवान अर्जुन को पीठ पे कभी नहीं बैठाया, अर्जुन की पीठ में कभी नहीं पहुंची। संबंध जो है डिफरेंट क्वालिटी का है, फॉर्मल जो है, फॉर्मल नहीं, फॉर्मल संबंध है उनके साथ भी। अर्जुन कहता है कि आप मेरे घर में जाके तो मैं तो आपके साथ सोता भी था, उठता भी था, बैठता भी था, परंतु तो मैंने आपको कभी भगवान नहीं समझा। आज मैं रियलाइज कर रहा हूं कि आप कौन है और मैं कौन। तो सखा का जो संबंध है उसके बाद जब आप चलते हो तो आप मतलब वात्सल्य, वात्सल्य देना और वात्सल्य लेना। तो भगवान ने प्रहलाद महाराज को वात्सल्य दिया है, गोदी में बिठाया है, चाटा है, तो प्रेम किया है, एक वात्सल्य देने का संबंध है। परंतु माताओं से, यशोदा जी से, राम जी ने, कौशल्या से, सुमित्रा से, वात्सल्य का संबंध है। वात्सल्य लिया कि मुझे माता पिता का प्रेम चाहिए, तो व्यक्ति जो है वात्सल्य रूप के अंदर भगवान की सेवा में लगता है, वात्सल्य के तरीके से भगवान के साथ संबंध स्थापित करता है। उसके बाद माधुर्य है, मिठास, मधु, मधु क्या होता है, शहद, मीठा। वो मिठास जो है उसमें रस, जो द्वारका की रानियां हैं उनका रस किस प्रकार का है कि हमारे पति हैं, बिलवड हस्बैंड, ये हमारे प्रिय पति हैं, तो पति के रूप में जो है उनका उनसे माधुर्य का भाव है। और जो गोपियां हैं उनका कैसा भाव है कि हमारे बिलवड प्रेमी हैं, प्रेम का भाव। तो अब दूसरे रूप में आए, ये शांत रस जो है वो चारों दूसरे भाव के अंदर है। भगवान से संबंध तो शाश्वत संबंध तो स्थापित है ना, तो शांत रस चारों के अंदर है। अब और एडवांस में जाए, माधुर्य रस की बात करते हैं। माधुर्य मतलब प्रेम, प्रेम। तो आपका अपने मित्र से प्रेम होता है कि नहीं होता, तो माधुर्य रस उसके अंदर भी है। माता पिता का बच्चे से प्रेम होता है, नहीं होता, तो माधुर्य रस उसके अंदर भी है। आपका वो बहुत अच्छा सेवक है तो उससे आपका प्रेम होता है, नहीं होता। भगवान क्या कहते हैं कि मैं भक्त के हृदय में विराजमान हूं और भक्त जो है मुझे अपने बस में कर लेता है। तो अगर प्रेम नहीं होगा तो भगवान जो है भक्त के बस में कैसे आ जाए। बस में आने के लिए वो माधुर्य होना चाहिए। तो टेन जो है माधुर्य का वो इन भावों के अंदर है, और शांत रस का टेन जो है चारों भावों के अंदर है। इस तरह जो है दूसरे को रेसिप्रोकेट करते हैं। और यहां चर्चा आ रही है, पूर्वाचार्य लिखते हैं कि पहली अनुभूति जो है निर्विशेष ब्रह्म की होती है। फर्स्ट कि आप जो है निर्विशेष ब्रह्म, निर्विशेष का मतलब क्या है कि आप कुछ विशेष नहीं मानता, कुछ विशेष नहीं है, नथिंग स्पेशल है। भगवान है निराकार, भगवान का कोई आकार नहीं। जब आप भगवान की भक्ति में लगते हो तो यहां रूपा जी क्या लिखते हैं इसके अंदर कि भगवान की भक्ति जो है वो आरंभ कैसे होती है। प्रथम अनुभूति निर्विशेष ब्रह्म की होती है, किंतु परमात्मा तथा अंतर्भूतवा भगवान की अनुभूति के लिए आगे जाना होता है। तो जब हम कहते हैं कि हम भक्ति में आ गए हैं तो भक्ति जो है उसमें भगवान के दो रूपों की चर्चा होती है। एक है सगुण साकार और दूसरा है निर्गुण। सगुण है और निर्गुण है, मतलब भगवान में गुण है, भगवान में गुण नहीं। इसको लोग कंफ्यूज करते हैं। पद्म पुराण में उल्लेख आता है, भगवान शिव जी से कह रहे हैं कि मेरे गुण असीम है जिनको मापा नहीं जा सकता, इसलिए लोग मुझे निर्गुण कहते हैं। परंतु जब हम सगुण की बात करते हैं इसका मतलब है भगवान में सभी दिव्य गुण हैं। जब निर्गुण की बात करते हैं तो भगवान में प्रकृति के तीन गुण नहीं है, तीनों गुणों के स्वामी हैं। भगवान तीनों गुणों के कंट्रोलर है, उसके स्वामी हैं। माया धीन नहीं है, माया धीश। तो जब सगुण की बात होती है तो समझने वाली बात क्या है कि भगवान में सारे दिव्य गुण हैं जो कि असीम है, जिनको कि नापा नहीं जा सकता। जब निर्गुण की बात होती है तो कहा जाता है कि भगवान तीनों गुणों से परे हैं, तीनों गुणों से भगवान नहीं भक्ते, गुणों के स्वामी हैं, गुणाधीश हैं। भगवान इन इंद्रियों का विषय नहीं है, इन इंद्रियों से आप भगवान को नहीं देख सकते। परंतु एक स्पेशल मर्सी है, स्पेशल मर्सी जो हरेक के लिए उपलब्ध है, परंतु वो उसकी उपलब्धता का इस्तेमाल नहीं करते। भगवान ने अपने आप को अर्च विग्रह के रूप में प्रकट किया, साक्षात भगवान सामने बैठे हैं आपके। इनको आप इन भौतिक इंद्रियों से देख रहे हो कि नहीं देख रहे? अभी आपकी इंद्रियां दिव्य नहीं हुई, परंतु जब हम कहते हैं a इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, सी इज इक्वल टू ए, तो इसका क्या अर्थ है? कि जो भक्त है उसकी इंद्रियां दिव्य हो जाती है, क्योंकि भगवान भौतिक इंद्रियों से देखे नहीं जा सकते, और आपको भगवान के दर्शन इन भौतिक इंद्रियों से हो रहे हैं। इसका मतलब है कि आपकी इंद्रियां दिव्य हैं। आपने हजारों लोग सड़क से निकलते हैं, कितने लोग अंदर आके दर्शन करते हैं, कितने लोग करते हैं? हाँ बताइए, जगन्नाथ जी की यात्रा निकलती है, दिल्ली में 25 करोड़ लोग रहते हैं, कितने लोग यात्रा में आते हैं दर्शन करने के लिए? महज लाख, 8-10 हजार जो है यात्रा के साथ चल रहे होते हैं, और बाकी झरोखों से या सड़क पे खड़े देख रहे होते हैं। कितने लोग होते हैं बाकी तो देखते भी नहीं, भगवान के दर्शन ही नहीं करना चाहते, क्योंकि भी उनका प्लेटफॉर्म वो नहीं। साकार का अर्थ यह है कि भगवान आकृति से युक्त है, प्रकट है। कैसे? योग माया ने उनके आगे से पर्दा हटा दिया है, रात उनके दर्शन कर पा रहे हैं। निराकार का अर्थ है जैसे आकाश तो है परंतु उसकी आकृति नहीं, आकाश की आकृति नहीं है, एक उसका रूप नहीं है आकाश का, उसको आप एक डिफाइन कर सको। इसी तरह भगवान जो है सर्वव्यापक है, ये उनका निराकार स्वरूप है। जब हम भगवान को निराकार कहते हैं तो भगवान जो है वो सर्वव्यापक है, इसलिए उनको निराकार कहा जाता है। हर एटम तक के अंदर जो है उपस्थित। जब गुणों की चर्चा करते हैं भगवान की, तो गुणों में भगवान के जो प्राकृतिक गुण हैं, जो हमारे दो प्राकृतिक गुण दिखाई देते हैं माया के, उनसे भगवान ऊपर है, अर्थात सतोगुण रजोगुण तमोगुण इन सबसे ऊपर है, मतलब इनके स्वामी हैं। और जो अप्राकृतिक गुण है, जैसे कि सौंदर्य, भगवान का सौंदर्य प्राकृतिक है कि अप्राकृतिक, अलौकिक है कि लौकिक है? ऐसा सौंदर्य है भगवान का, अलौकिक सौंदर्य है, उसका मुकाबला कोई कर ही नहीं सकता। यू जस्ट कांट मैच। एक बात आप देखिएगा कि हजारों लोगों ने, लाखों लोगों ने भगवान की छवि बनाई है कैलेंडर के रूप में, मूर्ति के रूप में, लकड़ी से, फाइबर ग्लास से, प्लास्टर ऑफ पेरिस से, मिट्टी से छवि बनती है, रंगों से छवि बनती है, मार्बल से बनी है, पत्थर से बनी है, या कैलेंडर क्रिएट किया गया है। हर एक छवि के अंदर सेम शक्ल नहीं दिखाई देती। आप 100 कैलेंडर ले लीजिएगा सामने, हर एक शक्ल में बाल रूप से लेकर बड़े रूप तक भेद होगा, परंतु एक भी छवि ऐसी नहीं है जो कि सुंदर न लगे। ये सुंदर है, ये उससे बढ़ के सुंदर दिखाई दे रही है, ये उससे बढ़ के सुंदर दिखाई दे रही है, पहले वाली तीसरे से अच्छी सुंदर दिखाई दे रही थी। आपने कभी ऐसा देखा कि भगवान की छवि किसी ने बनाई हो, कैलेंडर बिक रहा हो, उसमें भगवान आपको असुंदर दिखाई दे? उनका जो सौंदर्य है वो अलौकिक है, उनका ऐश्वर्य, उनका माधुर्य, ये सारे के सारे जो उनके गुण है वो दिव्य है, अलौकिक। तो जब आप प्रोग्रेस करते हो तो आपको शुरुआत कहां से करनी है? शुरुआत करते हो आप निराकार से, कि आप भाई मेरे को भगवान है और भगवान सर्वव्यापक है। यहां से आरंभ करने के बाद जब आप मंदिर में जाते हो, ठाकुर जी के दर्शन करते हो, उनकी छवि के प्रति आकृष्ट होते हो, फिर सुनते हो, फिर आप भगवान के निराकार स्वरूप से उठ के भगवान को सगुण और साकार मानने लगे। जब भगवद्गीता पढ़ते हो तो भगवान कहते हैं अहम सर्वस्व प्रभु, भगवान अपने बारे में चर्चा करते हैं, तब बात समझ में आती है कि व्यास देव जी ने भगवद गीता के अंदर धृतराष्ट्र उपवास लिखा, संजय उपवास लिखा, अर्जुन उपवास लिखा और कृष्ण बोल रहे हैं तो कृष्ण उपवास नहीं लिखा, क्या लिखा? श्री भगवान उपवास, अर्थात कृष्ण ही भगवान है, ये बात उन्होंने बता दी और सबने स्वीकार कर ली। यहां चर्चा आ रही है कि जो तीन स्थितियां हैं, निर्विशेष ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, ये तीन स्थितियां किस तरह से समझनी चाहिए? तो भागवतम के अंदर जो है श्लोक आता है, वदंती तस्मित तत्त्वम यज्ञान अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। परम सत्य का ज्ञाता परम सत्य का अनुभव ज्ञान की तीन अवस्थाओं में करता है, सब अवस्थाएं एक रूप है, ये ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान के रूप में व्यक्त की जाती है। फर्क क्या हुआ, डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस है सिर्फ उसकी रियलाइजेशन का, उसकी अनुभूति का, उसके एहसास का। रूपा जी यहाँ जो है बड़ा सुंदर एग्जाम्पल देते हैं कि जो नौसिखिया है, अर्थात जो बिगनर है, न्योफाइट डिवोटी है, वो सूर्य के प्रकाश का अगर अध्ययन करता है तो कहता है कि जो रोशनी आ रही है यही सूर्य है। इसे पूछा ना सूर्य कहाँ है, तो प्रकाश आ रहा है सामने, देखो वो सूर्य दिखाई दे रहा है, वो उसी को जो है सूर्य मान बैठता। जो एडवांस होता है, जिसको थोड़ा ज्ञान होता है, वो कहता है कि सूर्य जो है वो सामने दिखाई दे रहा है, ये रोशनी वहां से आ रही है, गोल थाली की तरह दिखाई दे रहा है, वो सूर्य है और रोशनी वहां से यहाँ आ रही है। और जो और एडवांस है वो ये कहता है कि इस रोशनी का सोर्स सूर्य है और सूर्य लोक है, एक सूर्य लोक है जहां पर कि सूर्य के देवता विवस्वान विराजमान है और वहां भी प्राणी रहते हैं, वो उच्चतम ज्ञानी है, सूर्य की पूरी जो है क्या क्या वो समझता है। तो इसके बारे में जो है एक और बड़ा सुंदर उदाहरण दिया गया है कि आप तीन अवस्थाओं में कैसे रियलाइज करते हैं। नई नई रेलगाड़ी चली तो किसी गांव के पास से निकल रही थी, तो थोड़ी दूर से जो गांव थे उधर, किसी गांव वाले रेलगाड़ी का नाम सुना नहीं था, तो कोई दूरी से जो रेलगाड़ी को देखने के लिए प्लान किया कि रेलगाड़ी सब लोग गांव वाले मिलकर देख के आते, कन्वेंस भी नहीं थी तो सोचा कि वहां तक कैसे पहुंचेंगे। तो डिसीजन ये हुआ कि गांव से तीन व्यक्तियों को भेज दिया जाए जो रेलगाड़ी देख के आए और आगे उसका वर्णन करे तो हमें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तीन लोगों को चुना गया और वहां पर भेज दिया गया। उन्होंने जाके पूछा भाई रेलगाड़ी कितने बजे आएगी, बोला संध्या समय आएगी, इधर से आएगी देख लेना। संध्या तक बैठे रहे, संध्या हो गई तो देखा कि दूर से ना एक बहुत बड़ी लाइट चली आ रही है, लाइट। उन्हें पूछा रेलगाड़ी, बोले यही है सामने आ रही रेलगाड़ी। तो एक व्यक्ति कहने लगा, रहे रेलगाड़ी तो जो है नाक के सर पे जैसे मनी होती है, रोशनी फेंकती है, ऐसे रेलगाड़ी एक बहुत बड़ा रोशनी का गोला है। इतना उसने रियलाइज किया और भाग लिया, गाँव पहुंच गए। देखा है, बोला हाँ देखा है, कैसी है रेलगाड़ी, रोशनी का बहुत बड़ा गोला है। बाकी दो खड़े रहे, थोड़ा समय निकला, थोड़ी गाड़ी जो है दूर से घूमती दिखाई दी, उसमें रंग में रोशनी अंदर चमक रही थी, तो सांप की तरह बल खा रही थी, सांप की तरह लहलाती चली आती। तो दूसरे ने कहा, वो कह रहा था ना कि जैसे नाग के सर पे मनी होती, वाकई नाग है उसके सर पे मनी है। उठ के गाँव भाग लिया, गाँव जाके कहने लगा रेलगाड़ी देखी, वो जो है सांप की तरह है लंबी और उसके माथे के ऊपर बहुत बड़ी रोशनी का गोला, जैसे नाग के मनी होती है ऐसी जो है उसके ऊपर रोशनी का बहुत बड़ा गोला है। ज्ञान प्राप्त हुआ थोड़ा। सेकंड सिचुएशन आई, तीसरा व्यक्ति बैठा रहा, रेलगाड़ी आई सामने खड़ी हो गई, अंदर घुस गया, जाके देखा टॉयलेट्स है, बाथरूम है, सीटें लगी हुई हैं, रोशनियां लगी हुई हैं, पंखे लगे हुए हैं, मैसेज बना हुआ है, एक डिब्बा दूसरा आगे इंजन है, उसमें कोयला धोखा जा रहा है। तो उसने जो है गांव में जाके उसकी कंप्लीट व्याख्या करी, कंप्लीट फुल व्याख्या रेलगाड़ी के बारे में पूर्ण रूप से बताया। तो पहला व्यक्ति जो है फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास जो है डिवोटी, जैसे जैसे उसकी मात्रा बढ़ती जाती है वैसे वैसे रियलाइजेशन बढ़ता जाता है। तो जो लोग भगवान को निराकार स्वरूप में मानते हैं, अर्थात जो समझते हैं कि सत चित आनंद, जो तीन शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, सचिदानंद कहते हैं ना, तो सत के प्लेटफॉर्म पे है, अर्थात सत्यता स्वीकार करते हैं कि भगवान है, परंतु समझ नहीं है कि भगवान कौन है और कैसे है। भगवान के निराकार स्वरूप को, सर्वव्यापक जो स्वरूप है उसको स्वीकार करते हैं। दूसरे को ज्ञान होता है, ज्ञान प्राप्त होता है कि भगवान जो है प्रत्येक प्राणी के हृदय में परमात्मा रूप में विराजमान है, वो परमात्मा है। तो वो जो है इस ज्ञान को लेता है, तो सत और चित के प्लेटफॉर्म पे, चित मतलब चेतना, चित मतलब ज्ञान। तो सत्य है, शाश्वत है भगवान, और उसके बाद फिर चित चेतना ज्ञान आता है, तो आपके हृदय में विराजमान है परमात्मा स्वरूप में भगवान का ध्यान। और तीसरा जो है भगवान के सगुण साकार रूप के ऊपर ध्यान लगाता है, समझता है कि भगवान सगुण है, साकार है, ऑल ब्लिस अर्थात आनंद। तो भगवान सत चित आनंदमय है, सच्चिदानंद। तो वही तीन अवस्थाओं में जो है भगवान को जाना जा सकता है। तो यहां जो है प्रभुपाद जी लिखते हैं कि प्रहलाद महाराज ने यहां वर्णित आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नति के द्वारा प्राप्त कर ली थी। इस सेंटेंस का बड़ा महत्व है कि आध्यात्मिक आनंद कब प्राप्त होता है, जब आप आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि जब तक आप कृष्ण के बारे में सुनेंगे नहीं, अभी आपकी बुद्धि जो है ना वो कम सी है, भौतिक, आध्यात्मिक नहीं हुई। आध्यात्मिक बुद्धि होगी तभी भगवान को समझ पाएंगे। तो आध्यात्मिक बुद्धि कैसे होगी, भगवान दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक में कहते हैं कि मैं तुझे निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं, इसे सुनो। यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो अपने को कर्मों के बंधन से मुक्त कर लोगे। टीचर ज्ञान दे रहा है, आपके पास उसको समझने की बुद्धि नहीं है, तो आपके लिए तो ज्ञान काला अक्षर भैंस वाला हो रहा है। बुद्धि नहीं है ना समझने की। क्या कहती है बुद्धि हमारी, एक गपोर है, भगवान की 16108 लाइनें थी, 16108 महल के लिए भी दिखाई नहीं देता। भगवान तो रास किया करते थे, शैलियां बना रखी थी, ये सारी फीलिंग कहां से आ रही है, ये भौतिक बुद्धि से आ रही है, भौतिक बुद्धि से। भगवान को समझ नहीं पा रहे। भगवान ने सारी भगवत गीता के तो मैं की चर्चा करी है, तो मैं करता हूं तो क्या प्रॉब्लम है, भगवान कर रहे हैं तो मैं भी कर रहा हूं। अरे भगवान कोई नहीं होता, ये महापुरुष थे। ऐसी ऐसी धारणाएं जो है जब दिमाग में आती हैं, इसका मतलब है भगवान का ज्ञान स्वीकार करने के लिए, समझने के लिए आपके पास अभी बुद्धि नहीं है। बुद्धि कब आएगी, बुद्धि का प्राकट्य कब होगा, तो भगवान जो है ये बात कहते हैं स्पष्ट रूप में, तेषां सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम तदा बुद्धि योगम तम ये मांगो बयान। उसके पहले कहते हैं मत चिता मन में प्राणा बोध अयंता परस्परम कथ्यंत माम नित्यम तुष्यंति चय रमंती चय, कि मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, हर जगह मेरी चर्चा करते हैं, हर समय, हर पल, हर क्षण, हर समय मेरी चर्चा करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं, किसी और की सेवा नहीं करते, मेरी सेवा करते, एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हैं, मेरे विषय में बातें करते हुए, चर्चा करते हुए परम संतोष और आनंद का अनुभव करते हैं। ऐसा भक्त जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगा रहता है, उसको मैं बुद्धि प्रदान करता हूं जिसके द्वारा वो मेरे पास आ सकता है। अर्थात भगवान जो ज्ञान देते हैं, उस ज्ञान को समझने के लिए आपकी बुद्धि आध्यात्मिक होनी चाहिए। अर्थात जब तक आप आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नति नहीं करोगे, आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक बुद्धि चाहिए, और आध्यात्मिक बुद्धि प्राप्त करने के लिए भगवान की कृपा चाहिए, उसके बिना नहीं होता। भगवान आगे कहते हैं, मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन अंधकार को दूर कर देते। सब कार्य भगवान करते हैं। आपके हृदय में बैठे हैं, जब आपका इच्छा देखते हैं, आपका भाव देखते हैं, आपका समर्पण देखते हैं, आपके कार्यकलाप देखते हैं, तो अज्ञान को वो ऑटोमेटिकली ज्ञान में कन्वर्ट हो जाता है। आपको फिर उसके लिए जो है कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इट विल कम आउट ऑटोमेटिकली। आप कहेंगे कि कैसे हो गया, तो आप सोच भी नहीं पाएंगे और वो हो जाएगा। दिस हैपेंस। हरे कृष्णा,
हरे कृष्णा,
श्री भगवान की जय।